यर्मिया बाब 8। रब फरमाता है, उस वक्त दुश्मन कब्रों को खोलकर यहूदा के बादशाहों, अफसरों, इमामों, नबियों और यरूशलेम के आम बाशिंदों की हड्डियों को निकालेगा और जमीन पर बिखेर देगा। वहां वो उनके सामने पड़ी रहेंगी जो उन्हें प्यारे थे, यानी सूरज, चांद और सितारों के तमाम लश्कर के सामने, क्योंकि वो उन्हीं की खिदमत करते, उन्हीं के पीछे चलते, उन्हीं के तालिब रहते और उन्हीं को सजदा करते थे। उनकी हड्डियां दोबारा न इकट्ठी की जाएंगी, न दफन की जाएंगी, बल्कि खेत में गोबर की तरह बिखरी पड़ी रहेंगी। और जहां भी मैं इस शरीर कौम के बचे हुओं को मुंतशिर करूंगा, वहां वो सब कहेंगे कि काश हम भी जिंदा न रहें बल्कि मर जाएं। ये रब्बुल अफवाज का फरमान है। इन्हें बता, रब फरमाता है कि जब कोई गिर जाता है तो क्या वो दोबारा उठने की कोशिश नहीं करता? जरूर। और जब कोई सही रास्ते से दूर हो जाता है तो क्या वो दोबारा वापस आ जाने की कोशिश नहीं करता? बेशक। तो फिर यरूशलेम के ये लोग सही राह से बार बार क्यों भटक जाते हैं? ये फरेब के साथ लिपटे रहते और वापस आने से इनकार ही करते हैं। मैंने ध्यान देकर देखा है कि ये झूठ ही बोलते हैं। कोई भी पछता कर नहीं कहता, ये कैसा गलत काम है जो मैंने किया। जिस तरह जंग में घोड़े दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, उसी तरह हर एक सीधा अपनी गलत राह पर दौड़ता रहता है। फजा में उड़ने वाले लकलक पर गौर करो, जिसे आने जाने के मुकर्रर औकात खूब मालूम होते हैं। फाख्ता, अबाबील और बुलबुल पर भी ध्यान दो, जो सर्दियों के मौसम में कहीं और होते हैं और गर्मियों के मौसम में कहीं और। वो मुकर्रर औकात से कभी नहीं हटते, लेकिन अफसोस, मेरी कौम रब की शरीयत नहीं जानती। तुम किस तरह कह सकते हो, हम दानिशमंद हैं क्योंकि हमारे पास रब की शरीयत है? हकीकत में कातिबों के फरेबदेह कलम ने इसे तोड़ मरोड़ कर बयान किया है। सुनो, दानिशमंदों की रुसवाई हो जाएगी, वो दहशत जदा होकर पकड़े जाएंगे। देखो, रब का कलाम रद्द करने के बाद उनकी अपनी हिकमत कहाँ रही। इसलिए मैं उनकी बीवियों को परदेशियों के हवाले कर दूंगा और उनके खेतों को ऐसे लोगों के सपुर्द जो उन्हें निकाल देंगे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब नाजायज नफा के पीछे पड़े हैं। नबियों से लेकर इमामों तक सब धोखेबाज हैं। वो मेरी कौम के जख्म पर आरजी मरहम पट्टी लगाकर कहते हैं, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब सलामती का दौर आ गया है, हालांकि सलामती ही नहीं है। गो ऐसा घिनौना रवैया उनके लिए शर्म का बास होना चाहिए, लेकिन वो शर्म नहीं करते बल्कि सरासर बेशर्म है। इसलिए जब सब कुछ गिर जाएगा तो ये लोग भी गिर जाएंगे। जब मैं इन पर सजा नाजिल करूंगा तो ये ठोकर खाकर खाक में मिल जाएंगे। ये रब का फरमान है। रब फरमाता है, मैं उनकी पूरी फसल छीन लूंगा, अंगूर की बेल पर एक दाना भी नहीं रहेगा, अंजीर के तमाम दरख्त फल से महरूम हो जाएंगे, बल्कि तमाम पत्ते भी झड़ जाएंगे। जो कुछ भी मैंने उन्हें अता किया था वो उनसे छीन लिया जाएगा। तब तुम कहोगे, हम यहाँ क्यों बैठे रहें? आओ, हम किलाबंद शहरों में पनाह लेकर वहीं हलाक हो जाएं। हमने रब अपने खुदा का गुनाह किया है और अब हम इसका नतीजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उसी ने हमें हलाकत के हवाले करके हमें जहरीला पानी पिला दिया है। हम सलामती के इंतजार में रहे लेकिन हालात ठीक न हुए। हम शिफा पाने की उम्मीद रखते थे लेकिन इसके बजाय हम पर दहशत छा गई। सुनो, दुश्मन के घोड़े नथुने फुला रहे हैं, दान से उनका शोर हम तक पहुंच रहा है, उनके हिनहिनाने से पूरा मुल्क थरथरा रहा है, क्योंकि आते वक्त ये पूरे मुल्क को उसके शहरों और बाशिंदों समेत हड़प कर लेंगे। रब फरमाता है, मैं तुम्हारे खिलाफ अफई भेज दूंगा, ऐसे जहरीले सांप جن کے خلاف ہر جادو منتر بے اثر رہے گا، یہ تمہیں کاٹیں گے۔ لا علاج غم مجھ پر حاوی ہو گیا، میرا دل نڈھال ہو گیا ہے۔ سنو، میری قوم دور دراز ملک سے چیخ چیخ کر مدد کے لیے آواز دے رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، کیا رب سیون میں نہیں ہے؟ کیا یروشلم کا بادشاہ اب سے وہاں سکونت نہیں کرتا؟ سنو، انہوں نے اپنے مجسموں اور بیکار اجنبی بتوں کی پوجا کر کے مجھے کیوں تیش دلایا؟ لوگ آہیں بھر بھر کر کہتے ہیں، فصل کٹ گئی ہے، پھل چنا گیا ہے، لیکن اب تک ہمیں نجات حاصل نہیں ہوئی۔ میری قوم کی مکمل تباہی دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میں ماتم کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی حالت اتنی بری ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا جلاد میں مرہم نہیں؟ کیا وہاں ڈاکٹر نہیں ملتا؟ مجھے بتاؤ، میری قوم کا زخم کیوں نہیں بھرتا؟